ओम शांति। आज के इस वर्कशॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। और आज के इस वर्कशॉप के हमारे गेस्ट, उनका है, मैं उनको सामने इनवाइट करूंगी, श्रीमती कविता शशिकांत सिंघानिया, आइए प्लीज। और श्रीमती श्रद्धा जैन, आइए प्लीज। अभी बहने हमारे आज के जो विशेष वक्ता हैं, उनका फूलों से बैजी से स्वागत कर रही हूँ। वैसे तो आप सभी दो दिन से पारिवारिक मूल्यों पर ही सुन रहे हैं, कैसे हम परिवार को एम्पावर कर सकते हैं। बहुत अनुभवी वक्ताओं से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है। तो आज हम सभी इस वर्कशॉप में यही एक विषय लेकर के आपस में विचार करेंगे। तो विषय सबका यही है कि फैमिली प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बातें आती हैं। तो प्रॉब्लम अगर है तो उसका हल भी है। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कौन और हल करने वाला कौन, कौन होंगे? हम ही है। इसलिए कहते हैं कि जब वर्कशॉप होती है, अगर कोई चीज बिगड़ती है तो उसको वर्कशॉप में ठीक कराने के लिए ले जाया जाता है, क्योंकि वर्कशॉप का काम ही यही है कि सारी बिगड़ी हुई चीज को ठीक करना। तो इसका मतलब हम सभी जो बैठे हैं यहाँ बहुत बड़े मैकेनिक बैठे हैं, हैं आप सर? बहुत बड़े मैकेनिक हैं। और अपने परिवार को हर एक चाहता है मेरा परिवार खुशहाल परिवार हो, समस्याओं से मुक्त परिवार हो, ये हम सभी चाहते हैं। और ये भी हम सबको मालूम है कि समस्याएं तो कभी खत्म होंगी नहीं, ये भी पता है। ऐसा हो सकता है कि समस्या खत्म होगी? नहीं होगी, लेकिन उस समस्या का समाधान करते हुए चलना है। अगर हम ये सोच करके चले समस्याएं, एक समस्या दूसरी समस्या, अरे समस्या ही समस्या है, ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर तो बढ़ती चली जाएंगे। अगर हम उसका हल निकालेंगे तो हल भी बहुत अच्छे से निकलते जाएंगे। तो मैं ऐसे बैठे बैठे विचार चला रही थी, क्योंकि फिर हम अपने वक्ताओं से भी सुनेंगे और आप सबके भी हम विचार सुनेंगे। तो मैं बैठे बैठे विचार चला रही थी कि जो फैमिली प्रॉब्लम की बात आती है, सबसे पहले हम सबके अंदर की एक फैमिली है, इनर फैमिली। अगर वो इनर फैमिली ठीक है तो आपकी सारी फैमिली भी ठीक है। अब इनर फैमिली को ठीक करना है, वो कैसे करना है, वो आप दो दिन से सुन रहे हैं, वो है आध्यात्मिकता। उसके बिना हमारी इनर फैमिली ठीक नहीं हो सकती। और हर एक यही एक लक्ष्य रखे कि मुझे अपनी इनर फैमिली को ठीक करना है। इनर फैमिली में मुख्य रूप से तीन जो हैं फैमिली के बड़े हैं, वो तीन बड़े कौन से हैं? वो हैं मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीन मूल हैं, इसके अंदर ही उनके सारे बच्चे आ जाते हैं, सब बच्चे आ जाते हैं। अब बड़े जब ठीक होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। इसलिए हमने अपनी मन की स्थिति को, बुद्धि को पहले समझना होगा, यानी अपने आप को समझना होगा। जब हम अपने आप को समझते हैं ना, तो सब कुछ समझ आ जाता है, सब कुछ समझ आ जाएगा और हर चीज का हल निकलता आ जाएगा। अभी तक अगर हम उलझनों में उलझे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी हम अपने आप को नहीं समझे हुए हैं। तो यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या करता है, अपनी समझ देता है। जो दुनिया के अनुसार हमने अपने आप को समझा हुआ है ना, वो ईगो है, उसमें ईगो है। लेकिन यहां जो समझ दी जाती है ईगो से परे, जिसको हम कहते हैं स्वमान, स्वमान में रहना, वो आप सब सुन रहे हैं यहां पर। तो इसलिए आज के हम वर्कशॉप में बैठे हैं विशेष इसी बात को लेते हुए कि हम प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी निकालेंगे। और केवल निकालना ही नहीं है कि यहां हम निकाल करके बैठे जाएं, यही छोड़ दें, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट करना, प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जो मैं पहले बता चुकी हूं वो है आध्यात्मिकता। उसके बिना आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, थ्योरी रह जाएगी। थ्योरी से क्या होगा, थोड़ी देर तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, थोड़ी देर होगा, उसके बाद फिर वैसे। क्योंकि आध्यात्मिकता से हमारे अंदर पावर आती है, करने के लिए पावर चाहिए ना। अब जब मेरे अंदर पावर नहीं है तो मैं उसको कैसे करूंगी। थ्योरी से कहते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन जब करने लगते हैं थोड़ी देर करते फिर वैसे हो जाते हैं। तो इसलिए अभी मैं टाइम ज्यादा नहीं लेती हूं, क्योंकि आप सबके विचार सुनने हैं। तो आप लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो जो भी आप सबके विचार आएंगे, अपने निशा बहन लिख रही हैं, और वो विचार सब लिपिबद्ध होंगे। फिर ऐसा नहीं कि वो विचार केवल आप तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन इसको शॉर्ट में करके हमारे जितने भी ब्रांचेज हैं, सेवा केंद्र हैं, ना केवल सेवा केंद्र, इसके अलावा भी बाहर भी हमारी सेवाएं चलती हैं, आपके विचार वहां तक भी पहुंचेंगे, उनको भी वो समाधान मिल जाएगा। तो इसलिए केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ अनेक आत्माओं का कल्याण भी कर रहे हैं। तो अभी मैं आगे बढ़ाती हूं। तो हमारे बीच में श्रीमती कविता शशिकांत जी बैठे, सिंघानिया जी बैठे हैं। मैं आपका शॉर्ट में परिचय दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, मेरे पास सिर्फ इनका ही परिचय आया है, कविता जी का आपका नहीं आया परिचय मेरे पास, इसी में जो है ठीक है। तो श्रीमती कविता शशिकांत सिंघानिया, आप नागपुर से हैं, आप बहुत सेवाएं करते हैं। शॉर्ट में आपका मैं बताना चाहूंगी, आप सिंघानिया ड्राई फ्रूट्स के निर्देशक हैं, 24 स्टार्स प्राइड क्लब के निर्देशक हैं, उप महामंत्री महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन आप किया है, आयोजन समिति टाइम्स ऑफ इंडिया और डॉक्टर रिचा यूनिक हेल्थ क्लिनिक के सहयोग में वुमेन अवार्ड प्राप्त हुआ है, कन्वेनियर रोटरी क्लब एवं ब्रह्मा कुमारी की आप हैं सदस्य, हथेली महिला मंडल एवं प्रेरणा महिला मंडल पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं, INBCN न्यूज द्वारा वुमेन अचीवर अवार्ड 2022 में, अग्रसेन की रसोई द्वारा कोविड योद्धा पुरस्कार, विदर्भ रत्न पुरस्कार 2023, सेमिनार में आप भाग लेते रहे हैं, पटवाड़ा में महिला सशक्तिकरण सेमिनार 2016 ब्रह्मा कुमारीज में, स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट समर कैंप 2019 में आपने भाग लिया है। तो अभी हम श्रीमती कविता शशिकांत जी से शॉर्ट में, क्योंकि सभी के हमने विचार लेने हैं, तो अभी आप आपके विचार हम सुनेंगे आज के विषय पर। प्लीज।
ओम शांति। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सभी यहाँ अपनी अपनी आइडेंटिटी लेके बैठे हैं, सभी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। अच्छा, आप में से ऐसा कोई है जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाथ उठाएंगे सब है। अच्छा, आप में से ऐसा कोई है, हाथ उठाएंगे, जो चाहते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं? आपको पता है, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आना मतलब चल रहे हैं, स्मूथली चले जा रहे हैं अपन इजीली। और जब हम हाई जंप मारते हैं और जब हम उड़ते हैं तो क्या होता है, बहुत चीजें क्रॉस करनी पड़ती, तब हम जाके उड़ते हैं। जैसे एक बच्चा जब पढ़ता है साल भर, लेकिन एग्जाम के दिए बगैर वो सेकंड क्लास में जा पाता है, तो एग्जाम तो हमें देनी ही है, उसके बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे और अपने आप को हम जज कैसे करेंगे? तो और जैसे अपन एक, आप लोग सभी इस चीज में एक्सपर्ट होंगे, जैसे कोई मूवी लगती है तो जब रियल लाइफ की जो मूवी लगती है तो उसको देखने में मजा आता है कि नहीं? जैसे मैरी कॉम हो गया, झांसी की रानी आई, तो रियल स्टोरी मूवी देखने में कितना मजा आता है, जीरो से हीरो बनने की स्टोरी सुनने में देखने में। तो वैसा हमें बनना है ना, कि हमें अब बताएंगे कि प्रॉब्लम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं मात्र 16 वर्ष की थी तब मैं इस संस्था से बहुत दिल से जुड़ी थी। तो शादी के पहले भी मैं ज्वाइंट फैमिली में थी और शादी के बाद भी ज्वाइंट फैमिली में। आप बिलीव करोगे, जब मैं शादी होकर आई तो मेरी 3 सास थी, एक मेरी सास, एक मेरी दादी सास और एक उनकी सास। आप सोचो, एक घर में अगर 3 सास है तो क्या होगा? लेकिन ज्ञान था बुद्धि में बहुत, तो उस ज्ञान को सामने रखते हुए कुछ भी प्रॉब्लम, बल्कि मैं प्रॉब्लम वर्ड यूज ही नहीं करना चाहती, वो सब हमें शिक्षाएं, अनुभूति हुई, हमें बहुत एक्सपीरियंस हुआ लाइफ का। और जब मैं इस संस्था से जुड़ी थी तो मैंने 2 लाइन यहाँ की बहुत अच्छे से पकड़ी थी, हर तूफान एक तोहफा लेकर आता है, ये मैंने पकड़ ली थी बात। तो पता है, जब प्रॉब्लम्स आती थी तो मन में ये बसता था कि तूफान तोहफा लेकर आ रहा है। तोहफा माना गिफ्ट, किस चीज की गिफ्ट? अनुभव, एक्सपीरियंस, शक्तियां तूफानों से मिलती है। और एक जो मेरा फेवरेट गीत है जो हमेशा मेरे कानों में गूंजता है आज भी, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। जब ये गीत गूंजता है ना तो आधी प्रॉब्लम्स माइंड में यही खत्म हो जाती है। और मैं आपको आज बताना चाहूंगी, जो मैंने बहुत रिसर्च किया इस चीज में, जब अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन की एक की है, जो मुझे यहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था में ही मिली है की, सक्सेस ऑफ की बोलो, सॉल्यूशन ऑफ की बोलो, वो की क्या है आज मैं आपको शॉर्ट पे बताऊंगी, 8 पावर्स। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इस 8 पावर्स के अंदर में नहीं है, इस सॉल्यूशन, सॉरी, कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है 8 पावर्स? तो दीदी, मैं शॉर्ट में वो 8 पावर्स बता देती हूँ, मैं आपको शॉर्ट में ही बता पाऊंगी 8 पावर्स का। तो वो उसमें देखना, आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो सबसे पहली अपनी 8 पावर्स में पहली पावर्स है पावर टू विथड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति।
ये मैं समझती हूँ इनका लेसन होने वाला भी है आज जी, ये पावर्स के ऊपर। तो फिर भी थोड़ा सा
एकदम शॉर्ट जो वो ये, लेकिन दीदी जैसे ये 8 पावर्स का जो है ना, ये हम मैंने ना ये जो अपनी फैमिलीज के ऊपर बनाया, जैसे एक आध्यात्मिकता होता है प्योर और एक जैसे अपनी फैमिलीज, तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ मतलब डिटैचमेंट, जैसे होता है ना कि सब तरफ बातें हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसमें हम इन्वॉल्वेशन चाह के भी नहीं हो पाते, लेकिन इननेसेसरी हम उस प्रॉब्लम में फंसते जाते हैं, तो उसको उस वो शक्ति का नाम है पावर टू विथड्रॉ। मैंने विस्तार को संकीर्ण, संकीर्ण को समाप्त, ये एक पावर है, बहुत बड़ी पावर है, ये हमारी पहली पावर है। और सेकंड है हमारी समेटने की शक्ति, लेट्स गो। जैसे होता है ना कि छोड़ो, जैसे आपको दो लोगों को झगड़ा होता है आप बोलते हैं ना छोड़ो, लेट्स गो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। लेट्स गो बहुत बहुत छोटा वर्ड है लेट्स गो, लेकिन अपने आप में बहुत पावरफुल है लेट्स गो। तो हमेशा बोलते ना लेट्स गो, बुरी आदतों को, बुरी इसको छोड़ते जाओ। थर्ड हमारा आता है सहन शक्ति। सहन शक्ति में क्या होता है कि उसमें हमें नॉलेज होना कि हमें क्या सहन करना है और क्या सहन नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन सास बहू का ही लेते हैं, तो एक सास जो होती है वो बहू को बोले जा रही बोले जा रही बोले जा रही, अब वो बेचारी चुपचाप सहन कर रही है, ठीक है सहन करती है, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में जाती है आफ्टरनून में, तुरंत अपनी मम्मी को कॉल करती है और सारी अपनी बातें बताती है। तो ये क्या हुआ, सहन करना हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। सहन तो किया लेकिन समाया नहीं। और सहन मतलब जिसमें रियलाइजेशन ही नहीं हो दुख का, वो है सहन करना। जैसे जब बेबी होता है तो कैसे कुछ चीज गिरा देता है या कुछ तोड़ देता है तो अपने को दुख नहीं होता, वो अपने आप एडजस्ट होते जाता है। उसी तरह दूसरी जो आती है हमारी, वो है समाने की शक्ति। जैसे जब वो बोलते ना, जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने कोई लेके आता है तो वो सेकेंड गॉड के रूप में आपको देखता है और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो हमें वो प्रॉब्लम को समाना चाहिए कि नहीं समाना चाहिए? लेकिन आजकल क्या होता है, तुम उसको मत बोलना, तुम उसको मत बोलना, तुम उसको मत बोलना, पता है ये पूरी फैला देते हैं कि समाया नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, इन अभी लेटर्स में सब ये पावर्स का इनबैलेंस हो गया है। जहां सहन करना चाहिए वहां समा रहे हैं, जहां समा रहे हैं वहां सहन करना चाहिए, जहां परखना चाहिए वहां निर्णय कर रहे हैं। तो पूरा पावर का इनबैलेंस। फिर हमारे सामने आती है परखने की शक्ति, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ये चारों शक्ति आती है ना हमारे अंदर में, तो अपने आप डेवलप होती परखने की शक्ति। तो ये कहां से आती है, ज्ञान से। जब हमारे अंदर में ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, तो हम प्रॉपर परख पाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, हमारे सामने कुछ अच्छे लोग भी आते हैं तो अपने को क्या लगता है कि पता नहीं इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा है, जरूर कुछ स्वार्थ तो नहीं है इसका, क्योंकि दुनिया ही वैसी है ना। तो अपन कई बार अच्छे को भी गलत परख लेते हैं। और उसके बाद में आती है निर्णय लेने की शक्ति। तो क्या होता है, निर्णय, एक एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल देता है। तो कई बार हम बोल देते ना कि तुम ये कर लो, लेकिन उसके अंदर पावर है कि नहीं, हमको पहले परखना पड़ेगा। हम इजीली बोल देते हैं कि जैसे कोई बच्चा है तुमको साइंस लेना है, लेकिन वो कैपेबल है, लेकिन आपका एक निर्णय उसकी लाइफ चेंज कर देता है, अच्छा भी और बुरा भी। कई बार जैसे कि नहीं तुमको तो चुपचाप सहन करना चाहिए, लेकिन क्या उसके अंदर पावर है सहन करने की, कहीं वो डिप्रेशन में ना आ जाए। तो ये पावर्स को समझना है। और उसके बाद आती है हमारी सामना करने की शक्ति। तो कई बार क्या होता है, आजकल क्या हो रहा है, जहां सहन करना चाहिए वहां सामना करते हैं, और जहां सामना करना चाहिए वहां सहन करते हैं। सामना सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी का हमें सामना करना पड़ेगा। और ये जब निकलती है, ये सातों पावर्स आती है, तो एक पावर अपने आप अपने अंदर आती है, सहयोग की शक्ति। जब अपने को बोलना नहीं पड़ता कि दीदी हमें ब्लेसिंग दो, हमें पावर दो, अपने आप फ्लो होता है, उसको बोलते हैं सहयोग की शक्ति। अपने आप ब्लेसिंग निकलती है, अपने आप हमारा नेचर हेल्पिंग बन जाता है। तो ये एट पावर्स, ये आप जरूर इसको अपने अंदर में आज अच्छे से धारण कीजिएगा। मुझे मेरी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी सारी प्रॉब्लम इसी से ही मेरी सॉल्व हुई है।
तो हम सभी ने सुना कि अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर जो एट पावर्स का बताया है उसको हम यूज करेंगे तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये कि आज हमारे अंदर शक्तियों का अभाव हो गया है। शक्ति ना होने के कारण ही कोई बात समस्या का रूप ले जाती है। अगर शक्ति है तो समस्या को हम जल्दी से समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए आपने अपने अनुभव के आधार से कैसे शक्तियों को यूज करके समस्याओं को उसको हल करते हैं, कैसे परिवार को चलाते हैं, आपने अपना अनुभव शेयर किया। अभी मैं श्रीमती श्रद्धा जैन से रिक्वेस्ट करूंगी, वे अपना अनुभव शेयर करेंगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप हैं। तो शॉर्ट में आपका बायोडाटा ये है। अभी हम आपसे सुनना चाहेंगे आज के विषय पर।
ओम शांति। जैसा कि आपने देखा मेरा बायोडाटा बहुत ज्यादा ही छोटा सा है। आई एम अ प्रोफेशनल, तो इनकम टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड तो काफी आइडिया है, लेकिन डेफिनेटली आई एम नॉट अ बिग स्पीकर लाइक कविता दीदी एंड दीदी। बट हाँ, जब मुझे मेरी कविता दीदी जिन्होंने मुझे इसमें थोड़ा सा ज्ञान दिया, मैं जयपुर से हूँ और जयपुर पीस पैलेस में करीब अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो थोड़ा बहुत जो आइडिया था तो मैंने सोचा इसको शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कविता दीदी का है एग्जैक्टली मेरा भी वही था। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास भी तीन सासुएं थी, मेरी दादी सास, मेरी सास और मेरी चाची सास। बहुत बड़ा परिवार था, पर कभी डर नहीं लगा कि इतना बड़े परिवार में कैसे रहेंगे। ओपन आर्म्स करके आए थे और दे वेलकम मी विद ओपन आर्म्स। मैंने इनफैक्ट अपनी सीए की और सीएस की पढ़ाई भी शादी के बाद कंप्लीट की है। अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो समझ सकते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट बाद में करना, बट मेरी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया तो आई वॉज ब्लेस्ड इन दैट केस। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी। मैंने बचपन में बहुत छोटी थी तब एक प्ले देखा था कि वाणी और व्यवहार से किस तरह से हम अपने घर को स्वर्ग या नर्क बना सकते हैं। उसका एक सीन आपके साथ शेयर करती हूँ। एक नर्क का सीन आप इमेजिन कीजिए। सास बैठी है ड्राइंग रूम में, बहू किचन में काम कर रही है, उससे एक ग्लास टूट जाती है और जैसे ही ग्लास टूटती है सास बाहर से आवाज लगाती है, अरे क्या किया, तोड़ दिया ग्लास को, तो पूरा घर ही तोड़ दे, सब मायके पे लेके आई है क्या जो सब कुछ तोड़ रही है। बहू रोती भी बाहर आती है, वो सास को दो बातें सुनाती है, सास उसे सुनाती है और तू तू मैं में बढ़ती चली जाती है। यही उसके बाद स्वर्ग का दृश्य देखने को मिला जिसमें वही ग्लास बहू से टूटती है और सास भागती हुई किचन के अंदर जाती है और कहती है अरे बेटा कहीं लगी तो नहीं, और बहू कहती है मम्मी ग्लास तो टूट गई, बहुत महंगा सेट था। तो सास कहती है अरे बेटा तुझसे ज्यादा महंगा थोड़ी था, कोई बात नहीं आ इसको साफ कर देते हैं। आप देखिए एक छोटी सी किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, रादर हम किस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा नेचर चेंज हो जाता है, पूरा हमारे घर का वातावरण चेंज हो जाता है। जैसे हमने दो दिन से यही सीखा है, कल बहुत अच्छे से इस चीज को समझा कि हमें रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, जो कि मुझे लगता है अभी हम सभी रिएक्ट ही करते हैं। जरा से कुछ बात हुई उसको सुनेंगे भी नहीं, उसके पहले बीच में ही काट के उसको रिएक्ट करते हैं। कल हम सब ने ये सेशन सुना था, बहुत अच्छा था, उसको बहुत गहराई से समझने वाली बात है। और भी काफी प्रॉब्लम्स है आई एम श्योर जो आप लोग सब भी फेस करते हैं, बच्चों के साथ भी। हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, वी ऑल आर बिजी मोबाइल पे, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं। पति घर आते हैं वो आके टीवी पे लग जाते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं। हमारे पास भी दो मिनट भी होता है तो मोबाइल लेके बैठना चाहते हैं कि पता नहीं क्या कुछ अपडेट आ जाए, और हमारे घर में क्या अपडेट हो रहा है हमें पता ही नहीं होता। बगल वाले कमरे में बच्चा रो रहा है, बगल वाले कमरे में हो सकता है सास को कोई तकलीफ हो पर हमें नहीं पता, पर मेरे यूरोप में बैठा हुआ किसी को क्या हो रहा है, वो कहाँ घूमने गया है वो मुझे पता होता है, फेसबुक अपडेट मुझे पता है, घर का अपडेट नहीं पता। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका हमें सब मिलकर सोल्यूशन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और एक और चीज जो कल भी देखने को मिली, अप्रिसिएशन। वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वन नाउडेज, कुछ भी नहीं करता। जो कल भी समझाया कि हमारा बच्चा 5 मार्क भी लेके आया, अप्रिशिएट मैं तो नहीं करती, मैं डेफिनेटली उसको बोलूंगी भाई ये 25 मार्क कहां खो के आए, पर वो अब सीखने को मिल रहा है कि अप्रिशिएट करना है और रिस्पॉन्ड करना है।
अब आप सब कौन इस पर शेयर करना चाहेगा, सामने आ जाएंगे आज के विषय पर कि फैमिली प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है, दो दिन से आप अच्छी तरह सुन रहे हो, मैं भी आपके साथ साथ सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि आज का विषय तो रखा है लेकिन सारी बातें तो शेयर हो ही रही हैं, तो इस विषय का क्या मना डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं, हर चीज की गहराई भी बहुत है और वहां तो सिर्फ थोड़े से जो वक्ता हैं उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और मैं समझती हूँ आप सबके पास भी बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव है। अब उसमें अच्छा है सामने आए, आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आई है और आप उसका किस प्रकार से समाधान करते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी के सामने कोई प्रॉब्लम है और उसके पास समाधान नहीं है, आप उसको समाधान देना चाहते हैं, वो भी दे सकते हैं। आपके हाथ में है, तब आप कौन आना चाहता है? आइए आइए।
ओम शांति, सम्मानी मंच और प्रबुद्ध सदन। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि जैन, मैं इंदौर से हूँ। चूंकि अभी मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान संकाय में मैं लेक्चरर के पद पर आसीन हूँ। तो मेरा जो विषय है वो समाज विज्ञान है, समाजशास्त्र और समाजकार्य में मैं विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ। तो जो दो दिन की वर्कशॉप अभी जो सेशंस अटेंड किए और जो भी पढ़ा है, उसमें मैंने कुछ जो चीजें सीखी हैं या जो सिद्धांत मैं जानती हूँ, और वो सभी को अपनाने चाहिए। और जो हम लोगों ने लास्ट 2 डेज से यहाँ पर दीदी ने भी हमको बताया, हम सभी जानते हैं कि फैमिली जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सेंट्रल यूनिट है। जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवार है, और परिवार से जुड़ी हुई हमारी अन्य संस्थाएं हैं, चाहे वो विवाह है या धर्म है या जाति है। तो परिवार और परिवार के सभी सदस्यों की भूमिका हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं एक गुलदस्ते के समान होते हैं जिसमें सभी तरह के फूल होते हैं, लेकिन सभी की भूमिका अलग अलग होती है। सभी का उतना ही महत्व है जितना एक गुलाब के फूल का है या एक चमेली के फूल का है। हम यह नहीं कह सकते कि गुलाब का फूल है तो उसका ज्यादा महत्व है या बेला का फूल है उसका महत्व कम है। तो हम सभी को अपने परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान करना है, छोटों के प्रति स्नेह रखना है, तभी हम अपने परिवार को एक साथ रह करके अपने इस समाज के लिए और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो दो सिद्धांत जो हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, जो हमने शायद कल भी डिस्कस किया था कि एक जो स्वीकारिता का सिद्धांत है, हर व्यक्ति के कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, तो हमको एज इट इज उसको उस रूप में स्वीकार करना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके रह सकते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। जिस तरह से हमारा एक थंब इम्प्रेशन है, हम सभी का देखने में तो एक जैसा है लेकिन सभी के इम्प्रेशंस अलग अलग आते हैं, तो सभी का अपना महत्व है। तो यदि हम अपने जीवन में प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन अपनाएं, तो निश्चित रूप से हमारे परिवार में जो समस्याएं आती हैं वो शायद ना आए, और यदि आए भी तो निश्चित रूप से हम उसका समाधान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत अच्छा आपने अपने अनुभव के आधार से बताया कि किस प्रकार से हर एक का महत्व परिवार के अंदर बहुत जरूरी है। जैसे कई बार होता है, मान लीजिए 4 का परिवार है या 6 का परिवार है, एक व्यक्ति ऐसा है कहते कि बस ये व्यक्ति हट जाए तो परिवार अच्छा हो जाएगा, ये व्यक्ति किसी तरह हट जाए। अच्छा, अगर वो व्यक्ति हट भी गया तो आप क्या समझते हैं, परिवार अच्छा हो जाएगा? नहीं अच्छा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मनुष्य आत्मा अपना महत्व लिए हुए है, और हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। केवल मुझे क्या करना है उसकी क्वालिटी को देखना है। मैं इस क्वालिटी के ऊपर आपको कुछ बताना चाहूंगी। अपने इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो फाउंडर थे, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जब वो इस साकार चोले में थे तो बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बाबा तो बाबा ही थे, आज अव्यक्त रूप से हैं, तो बाबा के सामने वैरायटी बच्चे थे, लगभग 350 थे। आपके घर में एक दो भी कैसा लगता है, 350 थे, कोई छोटे थे कोई बड़े थे, और सभी अपने भिन्न भिन्न संस्कार लेकर के आए हुए थे और सब डेडिकेटेड, और ब्रह्मा बाबा को सबको चलाना है। तो एक जो एक्सपीरियंस बताना चाहती हूं वो यही है, एक व्यक्ति थे, एक जो बाबा का बच्चा था, उसकी नेचर क्या थी कि जहां भी चार बैठे हैं ना, वहां बैठ करके बातचीत करना, गपशप लगाना, उसकी नेचर ये थी। और एक की नेचर थी कहीं जाना, घूमने चल पड़ना, एक घंटा दो घंटा, अरे कहां गए, इधर उधर चक्कर लगाने चले गए। अब एक की नेचर थी, उनको शॉपिंग के लिए भेजते थे मार्केट में, 10 दुकानों से रेट पूछते थे, कईयों की आदत होती है, लेकिन सामान नहीं खरीदना, सामान नहीं खरीदना, लेकिन रेट पूछना, दुकानदार भी तंग आ जाता है। और एक दिन की बात हो तो चलो ठीक है, लेकिन रोज ही बात ऐसी थी। अब ये उनका क्या कहेंगे, गुण था या अवगुण था, अवगुण था ना। अब बाबा ने क्या किया, बाबा ने उनको निकाला नहीं, बाबा ने क्या किया कि एक की जो जगह जगह बैठने की आदत थी ना, तो अब आप सोचिए, ये तो बहुत बड़ा कैंपस है, अभी 1100 जो पांडव भवन आप गए होंगे ना, तब वो छोटा था कैंपस, तो अब उन दिनों में जंगल जंगल बहुत थे, और कोई जानवर भी ऐसे आते थे ऐसा भी था, और भी कोई अंदर घुस आए तो कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड का चाहिए। तो बाबा ने उनको कहा, बच्चे आप, बाबा अगर आपको एक सेवा दे आप करोगे, तो बाबा को तो ना कोई नहीं करेगा। कहा जी बाबा। कहा बाबा आपको एक ड्रेस बनवा के देगा, और एक विसल और एक लाठी जो है छोटी वो देगा, और आप गेट पर बैठेंगे, अगर कुछ कोई ऐसा हो तो विसल बजा देंगे, और ड्रेस पहन के बैठे नेचुरल है कि पता चलेगा नहीं ये सिक्योरिटी गार्ड है, तो कोई पूछ करके ही आएगा, या आप उसको रोक भी सकते हैं। उसने बड़ी खुशी से उस सेवा को स्वीकार किया और वो गेट पर बैठ गए। अब जो इधर उधर फालतू बातें करता था, अब उसकी अवगुण को कहां यूज किया, सेवा में यूज हो गया, अब वो गुण में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही जिसकी घूमने की आदत थी, तो बाबा ने क्या किया, तो कहा कि बाबा आपको एक सेवा देना चाहते हैं, सेवा करोगे। कहा उन दिनों में अपने यहां पर गौशाला थी, गैया थी, कहा गैया को चराना होता है, क्या बाबा अगर आपको ये गैया चराने की जिम्मेवारी दे करेंगे। जी बाबा। बस अपना ठीक है, गैया को लेकर के चल पड़े, सवेरे गए शाम को आए, घूमना ही तो है ना, घूमना ही तो है, गैया को चरा दिया, सेवा भी हो गई, गैयों की पालना भी हो गई, और उसका संस्कार भी ठीक हो गया। अब तीसरा शॉपिंग, तो बाबा ने कहा कि अच्छा अगर बाबा आपको जिम्मेवारी शॉपिंग की, क्योंकि इतना बड़े 350 लोग हैं, उनका सामान आना सब कुछ करना ये भी तो एक बहुत बड़ी सेवा है, अगर बाबा आपको शॉपिंग की सेवा दे तो करेंगे। जी, क्योंकि बाबा ने उसका क्या देखा कि ये 10 जगह रेट पूछता है ना, इसका मतलब ये चीज ठीक ला सकता है और रीजनेबल ला सकता है, तो बाबा ने उसकी शॉपिंग की ड्यूटी लगा दी। अब सेवा हो गई, उसका जो है ये यूज भी हो गया। अब आप सोचिए, अगर बाबा कहते ये देखो कितना नाक में दम कर दिया इस बच्चे ने, जगह जगह जाकर के घूमता रहता है, बैठा रहता है इधर उधर कर, तो क्या होता, तो बाबा ने उसको कन्वर्ट किया। ठीक इसी प्रकार परिवार के अंदर भी जरूर है कि सबके वैरायटी संस्कार हैं। एक माँ जन्म देती है दो बच्चे को, दोनों बच्चे बिल्कुल अंतर है, एक बच्चा आज्ञाकारी है और एक बच्चा थोड़ा ऐसा है, तो माँ क्या करती है, तंग नहीं होना है, कोई उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना है, स्ट्रेस में नहीं आना है, लेकिन आप उसकी विशेषता को देखिए, इसकी विशेषता क्या है। वो आज्ञाकारी बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, मिलान मत कीजिए, उसकी भी क्वालिटी देखिए। अब उसकी क्वालिटी को आप देखेंगे, उसको यूज करेंगे ना, तो आपके दोनों बच्चे अच्छे हो जाएंगे। तो हमने अपना क्या करना है, हमने अपना एटीट्यूड नजरिया को चेंज करना है, एक दूसरे के महत्व को समझें। जैसे कि हम देखते हैं कि एक मशीन भी होती है, एक छोटा सा पेच भी अगर निकल जाए, मशीन रुक जाती है ना, उस पेच की भी वैल्यू है। ठीक इसी प्रकार परिवार के अंदर हर एक की वैल्यू है। तो सबका जब महत्व समझते हुए चलेंगे, चाहे वो घर के बड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, या कोई भी है, चाहे ज्वाइंट फैमिली है, आज ज्वाइंट फैमिली चाहे नहीं रही है, लेकिन हम देखते हैं कि ज्वाइंट फैमिली भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सिखाने का सोर्स है और सेफ्टी का साधन है। बड़ों का हम देखते हैं घर में होते, उनकी जो ब्लेसिंग होती है, बैठे ही रहते हैं चाहे, लेकिन उनकी जो सूक्ष्म, कुछ नहीं करेंगे लेकिन सूक्ष्म रूप से उनका जो है हमको एक आशीर्वाद मिलता है। तो इस प्रकार से जो बात चल रही है, जो सुनाया कि घर के अंदर किस प्रकार से हरि का महत्व होना चाहिए। अच्छा अभी और आइए प्लीज, फिर आपका अपना परिचय भी देंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे।
ओम शांति। सम्मान्य मंच और सभी गणमान्य मेरे सह प्रतिभागी, जैसा हम कल दो दिन से सुन रहे हैं और अभी दीदी जी ने भी जो कहा, मेरी पूर्व वक्ता डॉक्टर रश्मि भी कह रही हैं कि हमें अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की महत्ता को समझना है। तो उसी बात को मैंने अपने जीवन में कैसे को रिलेट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे शतरंज, चेस तो हम सभी ने खेला है, अभी भी खेलते हैं, बहुत मजा आता है। तो शतरंज में हर गोटी का अपना महत्व है। राजा की बात तो बहुत बाद में आती है, लेकिन ऊंट, हाथी, प्यादे, ये सब अपनी अपनी कैरेक्टर्स के साथ चलते हैं, और यदि कोई एक गोटी भी कम हो जाती है तो हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, अरे मेरा हाथी उड़ गया तो अब मैं कैसे इस गेम को जीत पाऊंगी। तो हमें अपने जीवन को भी इसी तरह से, परिवार को भी इसी तरह से समझना है कि हर व्यक्ति जो हमारे परिवार में है वो भी कोई हाथी है, कोई ऊंट है, कोई वजीर है, कोई राजा है। तो हर एक का अपना महत्व है, और ऊंट ऊंट की ही चाल चलेगा, हाथी हाथी की ही चाल चलेगा, घोड़ा ढाई घर ही चलेगा, उसको हम सीधा आड़ा नहीं चला सकते। तो उसी तरह से हर व्यक्ति के अपने संस्कार है, वो उसी तरह से चलेगा, और हमें उनकी चाल के हिसाब से अपनी गोटियों को फिट करना है। तो जो अभी दीदी जी ने कहा उसी बात को मैं इस तरह से अपने जीवन में को रिलेट करती हूँ। मुझे लगा कि ये आपको हर बार जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो शायद ये चेस का उदाहरण याद आएगा और हम अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि कल हमने बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी कि महिलाएं बहुत इमोशनली स्ट्रांग होती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत लो हो जाते हैं, इमोशनली हम वीक फील करते हैं, या हमें ऐसा लगता है छोटी छोटी बात पे हम हर्ट हो जाते हैं। तो उसको भी मैंने अपने जीवन में जिस तरह समझा कि हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल कई बारी परिस्थितियों को दे देते हैं, लोगों के हाथ में दे देते हैं, या ऐसी कोई सिचुएशंस को दे देते हैं जिससे हम खुश या दुखी हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने भावनाओं का, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखना है। तो वो रिमोट कंट्रोल जब हमारे पास रहेगा तो हमें कोई भी अपने हिसाब से हमारी भावनाओं को दुखी करेगा भी तो हमें ऐसा नहीं महसूस होगा कि हम हर्ट हुए हैं। तो वो रिमोट कंट्रोल सदैव हमें अपने पास रखना है ताकि हम कभी भी इमोशनली वीक ना हो और सिचुएशंस को बेहतर ढंग से हैंडल कर सकें। ये दो बातें मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। शायद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते ही हैं, आए दिन होते हैं, पल पल होते हैं, जब हमें लगता है कि हमें ग्रांटेड लिया जा रहा है, हम लो हो रहे हैं, कोई भी हमें हर्ट कर रहा है, या हम ही हर्ट हो जाते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं है बड़ी, लेकिन हम ही हर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों, इन दो बातों को यदि हम बार बार कभी रिकॉल करें तो शायद हम उस परिस्थिति से बेहतर ढंग से डील कर सकते हैं।
तो आप सबने रिमोट किसके हाथ में दिया हुआ है, अपने हाथ में रखा है या किसी के हाथ में दिया हुआ है? जो हमारी जो इमोशंस, जो इमोशनल पार्ट वीक हो जाता है या हर्ट हो जाते, छोटी छोटी बात में हर्ट हो जाते हैं, किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कहा बस एकदम हर्ट हो गए, कहते मुझे बहुत हर्ट होता है। तो हमने अपनी रिमोट तो दूसरे के हाथ में दे रखी है, वो जैसे चलाएंगे वैसे चलना है? नहीं, अपने आप को चलाना भी सीखना है। अपने को चलाने के लिए रिमोट अपने हाथ में रखी है, ये जरूर ध्यान रखना है जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। अच्छा, और आइए, ये अभी फिर इनका।
सबसे पहले दीदी जो काफी देर से हम सबको मार्गदर्शन दे रही हैं, और दीदी मैंने दो दिन के लेक्चर्स तो नहीं सुने क्योंकि कविता जी और हम लोग अभी जस्ट 11 o'clock ही यहाँ पर पहुंचे हैं, पर अपने थोड़े से लाइफ के अनुभव मैं बोलूं, या मैंने भी नमोकार मंच पर अपनी PhD कंप्लीट की है, मैं नागपुर से डॉक्टर ऋचा जैन। आज एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे दिन की शुरुआत। हमको रात में जब रोके थे हम लोग, तो दीदी अहमदाबाद में रुके थे, लगभग 4 बजे हम लोग उठे, और जब हम नीचे जब उठे ही थे तो एक साउंड बज रहा था। उस साउंड की महत्वता समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये कॉन्फ्रेंस जब ऑन हुई तो दीदी ने बोला म्यूजिक स्टार्ट करिए। ये म्यूजिक क्यों स्टार्ट की गई? क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेट लाना था और हमको अपने माइंड को स्पिरिचुअल कन्वर्ट करना था। तो यदि हम अपने घरों में क्या करते हैं, हम घर में उठते हैं और उठते साथ ही अपने फटाफट अपने काम में लग जाते हैं, और इतने काम में लग जाते हैं कि केवल आपके बर्तनों की आवाज आपके घर में आती है, पर आपके घर में उस टाइम कोई भी स्पिरिचुअल साउंड नहीं बजता। पर यदि हम ये मन में लगन ले लें कि हमने जैसे हम बाबा के घर में स्पिरिचुअल साउंड सुनते हैं, यदि ऐसा एक साउंड छोटा सा हमने अपने घर में दिन की शुरुआत में बजा दिया, तो आपके घर में जो लोग सो रहे हैं और आप जाग गए हैं, दोनों के कान में जो स्वर पड़ेंगे वो कैसे पड़ेंगे? आप जिस धर्म को भी मानते हैं, जैसे मैं जैन धर्म को मानती हूँ, मैंने गाड़ी में सबसे पहले, मेरा तो नेचर है कि मैं सुबह जैसे ही उठती हूँ सबसे पहले मेरी सारी चीज बंद होती है, सबसे पहले मेरे मोबाइल पर यूट्यूब पे भजन स्टार्ट होता है। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ नहीं देखती, सब 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे बाद, क्योंकि यदि मैंने तुरंत देख लिया तो जो बाहर की निगेटिविटी है वो सबसे पहले हमारे अंदर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम दिन भर निगेटिविटी लेते रहते हैं। जिन लोगों से हमको बहुत दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, जैसे इन्होंने अभी बोला कि फेसबुक के फ्रेंड्स हम देख लेंगे और हमारे घर में सास को कुछ हो रहा है हम उसको नहीं देखेंगे। छोटे छोटे गुरु मंत्र होते हैं, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि आज यदि मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ है, मेरे मदर इन लॉ है, आज हम यही भूल गए हैं कि हम अपनी ड्यूटी तो समझते हैं पर हम ये प्रोटोकॉल नहीं बना पाते कि आज हमारा किसका क्या काम कहां पर है। तो छोटा एक छोटा गेट टूगेदर, आप नाश्ते के टाइम हो या आपके घर में जब भी सब लोग एक साथ हो सकते हैं, एक 5 to 7 minutes यदि हम एक दूसरों से मिल लें और ये समझ लें कि आज दिन का उनका क्या शेड्यूल है, तो हम उनकी लाइफ को बहुत स्मूथली रन कर पाएंगे। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज लोगों ने मोबाइल को इतना ज्यादा अपना लिया है कि एक हाथ से तो आप खाना खाते हैं और दूसरे हाथ से या तो टीवी चालू होती है या आपका मोबाइल चालू होता है। यदि इसको संस्कार के माध्यम से यदि आप मापदंड करेंगे तो ये बोला गया है कि यदि आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं और जो बाइट आप अपने माउथ में डाल रहे हैं तो वो माउथ का बाइट आपका रोटी का टुकड़ा नहीं बना। जो आपने सामने यदि वहां बंदूक चलते देखी ना तो आपने बंदूक की गोलियां साथ में खा ली, ये बोला जाता है। तो मतलब आपके अंदर जो संस्कार गए, जब वो खाना खा के आप कोई काम पे जाएंगे ना, तो आप अपने ऑफिस के हर एम्प्लॉय को डांटेंगे, आप हर काम एग्रेसिव होकर करेंगे। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन का है तो बहुत छोटा सा काम कि हम खाना खा रहे हैं, पर खाना आप किस तरह खा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने जीवन में उसको इम्प्लीमेंटेशन क्या किया। कोशिश करिए, यदि हम हस्बैंड वाइफ फैमिली यदि टाइम है, भले आप डेली वर्किंग डे में नहीं खा सकते, यदि आप लोग वर्किंग वूमेन है तो संडे एक ऐसा रखिए जो फैमिली गेट टूगेदर के साथ लंच कीजिए, जिससे आप एक दूसरों को समझ सकें। यदि वर्किंग डे में आप दिन में टाइम नहीं निकाल पाते, तो कम से कम रात को दिन एक टाइम ऐसा अपना लाइफ के शेड्यूल बनाइए कि पूरी फैमिली आधे घंटे एक घंटे एक साथ बैठेगी, और दिन भर में हमने क्या किया, दिन भर में किसने, देखो आज यदि मैं मदर हूं तो मेरी बेटी की प्रॉब्लम मेरे से अच्छे से सॉल्व कोई नहीं कर सकता। कितने आप टीचर लगा लो, कितने डिनर लगा लो, कितने कुछ कर लो, जो एक माँ बाप अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं नहीं मानती इस जीवन में और कोई उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यदि आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम समझोगे ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन कभी जीवन में नहीं पा पाओगे। समझिए कि उनको क्या फेस हो रहा है, तब वो आपके, क्योंकि आज बच्चे हमसे 50% बात छिपा देते हैं, बच्चे नहीं बताते। जब तक आप उनको समझेंगे नहीं, उनके पास टाइम नहीं देंगे, उनको इमोशनल उनसे पूछेंगे नहीं, जब तक आपकी बात उनको पता नहीं चलेगी। दूसरा, एक हमारी बात चल रही थी रस्ते में आते हुए, दीदी जी कविता और हमारी शेयरिंग चल रही थी कि आज एक घरों में बहुत खराब सिस्टम चल गया है, जिनसे जन्म लेके हम बड़े होते हैं, जिनके कारण हम उस घर में बहू बन के आते हैं, जिनके बेटे को हम अपना पति तो मान लेते हैं, पर थोड़े दिन बाद उन्हीं माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आप, हम ये भूल जाते हैं कि आज हम यदि अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, तो कल हमारा बेटा भी हमको वृद्धाश्रम में भेजेगा, क्योंकि उसको संस्कार वो मिले, और संस्कार देने वाला कौन है, संस्कार देने वाले कौन है, हम खुद हैं। तो आज जो संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे, आज फैमिलियां टूट क्यों रही हैं, क्योंकि यदि आपकी सास दूर रहती है और यदि वो आपके घर आ जाती है, तो आप क्या करते हो, पूरे टाइम गुड़गुड़ कुड़कुड़ गुस्सा गलत बोलना ये करते हैं ना। हम जब जो कर रहे हैं, तो कल आपकी बहू आएगी तो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी, हम ये चीज भी भूल जाते हैं। तो यदि हमने अपने आपस में बड़ों से प्यार, बड़ों से श्रद्धा और अपने घर के माहौल को यदि पॉजिटिव नहीं रखा, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि एक इंडिविजुअल महिला में वो सारी शक्तियां हैं जो दीदी आपकी पुस्तक में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, हमारे जैनिज्म में भी हमेशा पढ़ते हैं कि महिला एक श्रोधार है हमारे घर की। यदि हमने बच्चों से लेके बड़ों को संभालना चाहा, तो ऐसा जरूर है कि हम हर व्यक्ति को संभाल सकते हैं। तो आज ये फैमिली टॉपिक था, तो मेरे तरफ से मैंने अपनी मतलब जो भावनाएं थी वो आपके सामने व्यक्त की। यदि बोलने में कोई त्रुटि है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सादर जय जनीन, ओम शांति।
तो महिला के अंदर सब प्रकार की पावर है, महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है, चंद्रमा तक पहुंच गई इधर उधर वो तो ठीक है, लेकिन हम जो घर परिवार की बातें कर रहे हैं, जो फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये सोचें कि मुझे समाधान करना है, मुझे करना है। मैं लास्ट में वो बात को लूंगी कि पहले आप सबके अनुभव हम सुन लें, फिर उसके बाद शिव बाबा हम सबको क्या कहते हैं, हमको क्या करना है। अगर एक फैमिली को, परिवार को हम सुखद बनाना चाहते हैं, स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो कुछ करना तो आपको ही होगा, क्योंकि महिला घर की धुरी है। जैसे कि आप सुन भी चुके हैं, महिला के बिना घर क्या है, महिला के बिना घर कुछ नहीं है। इसका मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं जो पुरुष नहीं कर सकता, महिला सब कुछ कर सकती है। तो अपनी पावर्स को हम समझें और अपनी पावर्स को सही रूप से यूज करें, उसको यूज करो और पावर आपकी बढ़ेगी। ये ध्यान देना, कई बार हम अपनी पावर को यूज ही नहीं करते, हम है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, सब कुछ है आपके अंदर, बहुत कुछ है, अपने आप को थोड़ा समझने की जरूरत है। अच्छा अभी ये बहन कह रहे थे। अच्छा
ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम रेनू गुप्ता है, मैं प्रोफेशन से एक बेकरी शेफ हूँ, जो बाहर जो लोग जाते हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देती हूँ। और मेरे समय में जब मैं 19 साल की हुई, ग्रेजुएशन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ तभी शादी हो गई थी। तब तक ब्रह्म कुमारी इसका तो कुछ मुझे बिल्कुल पता भी नहीं था, मैं यूपी से हूँ और शादी हुई एमपी में। तो जो यहाँ पर हम बेसिक ज्ञान की बातें दो दिनों से सुन रहे हो और मैं 7 साल से साकेत इंदौर में जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी मम्मी ने शादी जब मेरी 19 साल में हुई तो आप समझो कि बिल्कुल बच्ची, मतलब कुछ देखा ही नहीं है जमाना, बस अपनी पढ़ाई की, शेफ की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन किया और शादी हो गई। तो मुझे बहुत डर लगने लगा क्योंकि शादी यूपी से एमपी में हुई, तो ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत डर रही थी, कि मैंने कहा मम्मी वहाँ तो बिल्कुल सब अलग लोग, अलग तरह का रहन सहन खान पान, और पर रिश्ता हो गया तो पहले ये भी होता था कि एक बार पापा ने रिश्ता कर दिया तो वो फिर कुछ होता नहीं था, मतलब शादी होनी है। तो उन्होंने कहा बेटा, वो शिव पुराण बहुत पढ़ती थी, तो उन्होंने मुझे एक प्रसंग सुनाया कि बेटा जो शिव जी की बारात है ना, उसके शिव जी की शादी का वो देने लगी कि इस तरह उनका विवाह हुआ और उन्होंने इतनी तपस्या की, फिर शिव जी के साथ उनकी शादी पक्की हो गई। तो जब बारात आई दरवाजे पे, तो उनकी माँ ने देखा, पार्वती जी ने, कि कैसी बारात है, वो तो बेहोश हो गई देख के उसको वहीं, कि ये कैसी बारात आई है। तो बोले लेकिन शादी हुई और आज भी हम शंकर पार्वती जी को पूछते हैं। तो उन्होंने बताया बेटा इसी तरह जीवन में ये जो बारात होती है ना, जीवन की बारात जो है, जिससे तुम्हारा लगन हो रहा है, जिसके साथ तुम्हें जीवन निर्वाह करना है, जो घर परिवार तुम्हें मिलेगा, उसमें सब अलग अलग ढंग के होंगे। बोले बिल्कुल तुम ये सोच के मत चलो कि सब तुम्हारे जैसे होंगे, वही करेंगे जो तुम सोचोगे, जो तुम चाहोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बस तुमको क्या है, अपने कदम संभाल संभाल के रखना, क्या बोलना है, क्या सोचना है, पहले सामने वाले की सुनना फिर बोलना, पहले जो सोच रहे हैं पहले उसको अंडरस्टैंड करो फिर सोचो। तो मैं आज 40 साल हो गए मेरी शादी को, जब भी कोई बात आती है तो मैं बस इसी को देख लेती हूँ कि सब बिल्कुल टोटली अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग आत्मा है। जैसा कि हमारी वो बहन ने कहा कि भी थम इम्प्रेशन भी सबका एक जैसा नहीं होता, और उसके उसमें भी सबसे ज्यादा जो यहाँ के ज्ञान का एक मेन बहुत ही अहम हिस्सा है, सरलता। आप बिल्कुल सरलता से रहो, कोई अपने ऊपर कोई भी चीज ओढ़ के मत रखो दिमाग के ऊपर कि मैं ऐसी हूं, मैं ये हूं, मैं वो, कुछ नहीं। हम एक सिंपल साधारण इंसान हैं और बिल्कुल सरलता से आप अपना कार्य करते रहो बिना दिमाग पे किसी लोड के। दो दिन से मैंने यही कॉपी में लिखा है और यही मुझे समझ आया कि सिंपलिसिटी, सरलता जो यहाँ की बहनों को देखने से ही हमें लग जाती है। तो हम कोई भी रंग के कपड़े पहने, अगर अंदर से हम सरलता के गुण को अपना लें और अपने ईगो को त्याग दें, तो जो कि हमारे रग रग में, हमारी बातचीत में, हमारे व्यवहार में इतना घुला मिला होता है कि हम ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं कि ये हम अहंकार से सोच रहे हैं या हम नॉर्मल सोच रहे हैं, इतनी बुरी तरह से वो हमारी रग रग में घुल गया है। तो यहाँ की जो सरलता है वो मैं साथ में लेके जा रही हूँ और वही आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि सिंपलिसिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। ओम शांति।
अच्छा और हाँ जी पीछे पीछे से फिर आप।
ओम शांति। मैं अंजू महाजन, रिटायर्ड लेक्चरर। मैं मेन आज जो टॉपिक है वो फैमिली प्रॉब्लम्स पे है। तो जैसे इससे पहले मिसेज जैन है, उन्होंने भी बात की कि सास के आने पे हम, मतलब बहू भी बुड़बुड़ करने लग जाती है या कुछ भी ऐसी बात। एक ये मेन मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं सबके घरों में बेटी होगी। जब बेटी का बचपन होता है हम कहते हैं जल्दी उठ जा, आगे जाके जब शादी होगी फिर तेरी सास ऐसे करेगी। हम उसको बचपन से ही एक सास का ऐसा डर बिठा देते हैं
कि जैसे उसके माइंड में साइकोलॉजिकल बैठ जाता है कि जब मेरी शादी होगी ना तो सास का नेचर ऐसा ही होगा कि वो हमें डांटेगी, जबकि डांट तो माँ भी बहुत डांटती है। मेरी बेटी थी, मैं तो उसको कई मेरी कुछ गलत करती थी, चांडा भी लगा देती थी, भाई गलती पे डांटती है माँ, मगर माँ की का गुस्सा तो नहीं करती बेटी, बिकॉज सास का गुस्सा इसलिए करती है क्योंकि उसका बचपन से हम हर समय उसके माइंड में बिठा देते हैं कि तेरी सास जब खाना सीख ले, खाना ना आया तो तेरी सास तुझे डांटेगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज एक जो हम बचपन से बेटी को पढ़ा देते हैं ना कि तेरी सास एक मतलब उसके अंदर डर बिठा देते हैं सास का, जिससे कि वो उसके माइंड में सास की वही पिक्चर रह जाती है कि सास अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो मुझे लगता है ये चीज हमें सबको बड़ी जरूरी है कहनी कि मतलब बच्चे को समझाओ, मतलब ये नहीं कि उसको ये एग्जाम्पल देगे कि तेरी सास तुझे कुछ आगे जाके ये कहेगी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, तो हो सकता है आप सबको ये बात मेरी ठीक लगी हो। तो मेन बिकॉज आज का टॉपिक है फैमिली प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर मैं इस चीज को बोल है।
ठीक बात है कि आपने उसको छोटेपन से ही आप डाली वही रहे हो, अरे ये तुम खाना नहीं बनाना जानती हो, आगे देख तुम्हारी सास ऐसा करेगी, अभी तुम्हारी सास ऐसा करे, और पहले से ही उसके दिमाग में एक अपनी पिक्चर बना दी है। अब जाती है तो सास, अरे मेरी सास ऐसी मेरी, जबकि वो नहीं भी होगी लेकिन उसके मन में पिक्चर तो बनी हुई है। इसलिए इस प्रकार के जो नेगेटिव बातें हैं वो हम पहले से क्यों संस्कार में दे रहे हैं, हम उनको अच्छी बातें दें ताकि वो अगर दूसरे परिवार में जाना भी है जाएगी तो वहां पर वो अच्छा ही अनुभव करेगी ना। अगर पहले ही माइंड में वही पिक्चर बनी हुई है तो जरूर है कि वहां पर वही उसको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये बहुत अच्छी बात आपने सुनाई है। हाँ जी,
ओम शांति। मेरा नाम अजय सिंह है और मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एमफिल में टॉप किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। राइट नाउ आई एम प्लांट स्टाइलिस्ट। मुझे ये देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ज्यादातर मेरी बहनें बहुत संयमित हैं और वो अपने घर के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से डील कर रही हैं। लेकिन यहाँ मैं एक समस्या लेके आई हूँ जिसका समाधान शायद आप में से कोई दे पाएगा। यहाँ पे आने से पहले, जैसे कि मैं गुरुग्राम में हूँ, हमारे पास में ही नूह में हिंसा का एक इंसिडेंट हुआ था जिससे मैं बहुत भयभीत थी और एक बार मेरा आने का प्रोग्राम कैंसिल भी हो गया था क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ के आना उचित नहीं समझ रही थी। यहाँ मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे सब बहनों ने कहा कि कैसे वो अपने बच्चों को परिवार को अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं, यहाँ पे मेरा कहना ये है कि परिवार का जो असर है वो बच्चों पे कम हो रहा है। मैं नहीं जानती कि आपका अनुभव क्या रहा है, लेकिन जैसे मैं दिल्ली और गुरुग्राम में मैंने काफी समय, ऑलमोस्ट मैंने 30 इयर्स बिताए हैं, तो मैंने ये देखा है कि बच्चों की जो वैल्यूज हैं वो पीयर ग्रुप से और समाज से ज्यादा प्रभावित होती हैं। हम उन्हें कितना भी समझाते हैं कि ये बातें सही नहीं हैं पर बच्चे वो नहीं मानते। जैसे गुरुग्राम में तो ड्रग्स की इतनी प्रॉब्लम है, बच्चे वेप लेने लगे हैं, ड्रिंक करते हैं, लड़कियां हैं वो खुले तौर पर घूमती हैं। और मैं ये चीज समझती हूँ कि जैसे आप सब बहनों ने बोला कि सब कुछ इतना सुव्यवस्थित और सही ढंग से संचालित है, तो ये जो बच्चे वेप करते हैं या जो घर में झूठ बोलते हैं या ये जो दंगों में चले जाते हैं 16-17 साल के बच्चे, ये समाज के किस वर्ग से आते हैं और हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो ये एक अनजाना सा भय हमेशा लगा रहता है, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो यही डर लगा रहता है कि किस संगत में है और हम इन बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय हम छोटे थे हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को जान भी नहीं पाते कि वो किस उससे निकल रहे हैं। और अभी मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनकी लड़कियों की अभी शादी हुई और 3-4 साल से किस कोई घर छोड़ के आ जाते हैं, किसी को उसके ससुराल वाले निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ देख के हमेशा एक भय का वातावरण बना रहता है और कोशिश ये रहती है कि बच्चे हमारे सुरक्षित रहें और हमारे अंदर जो ये एक अनजाना सा डर बैठा रहता है उसको कैसे कम करें, क्योंकि मेरे को इस समस्या का कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं हल मिलता, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसको कैसे कंट्रोल करें। धन्यवाद।
हाँ जी, इनके प्रश्न है, किसके पास आंसर है दीजिए, पहले वो फिर आप आएंगे।
मेरा नाम शशि है, पिछले 9 साल से बाबा का ज्ञान सुन रही हूँ। जैसे बहन ने कहा कि उनको बच्चों का बहुत डर रहता है, मेरा बेटा गुड़गांव में जॉब करता है। इसका जो मुझे मेन रीजन समझ में आता है, जो सॉल्यूशन समझ में आता है, कि बच्चों के साथ बहुत क्लोज कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। उसका हाउसमेट जिस घर में वो रहता है, हाउसमेट 3 बॉयज रहते हैं, उसके हाउसमेट ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और उसी घर पे रहता है, लेकिन मेरा बहुत क्लोज कम्युनिकेशन होने की वजह से वो नहीं पीता, कभी भी टच नहीं करता। डेली हमारी बात होती है 1/2 घंटे के लिए, वो अपना पूरा रूटीन मुझे बताता है, आज क्या क्या, बहुत छोटी छोटी चीजें। एज अ पेरेंट्स कभी हमें ये नहीं सोचना, जैसे हमने क्लास में भी सुना था कि हमें बच्चों के लेवल तक उतरना होता है, उनके हर इंटरेस्ट में, हर बात में, उनके हमें इंटरेस्ट भले नहीं भी है लेकिन हमें शो करना होगा कि हमें उन चीजों में उन बहुत इंटरेस्ट है, तभी वो हर बात शेयर करते हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं, कई पेरेंट्स की कंप्लेंट सुनी कि बच्चे शेयर नहीं करते, शेयर इसलिए करना छोड़ देते जब उनको लगता है हमारे पेरेंट्स हमारी सुनते नहीं है, उनको हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट शो करना है। डेली वो अपनी शेड्यूल बताता है, डेली मैं भी बताती हूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उससे पूछती हूँ, बिकॉज जस्ट टू कम एट हिज लेवल। कि जैसे शेयरिंग होती है 2 फ्रेंड्स के बीच में, उसकी कोई बात डेली रूटीन में मुझे गलत लगती भी है तो मैं इमीडिएटली उसको ये नहीं बोलती हूँ गलत है, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरी बात को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैं बहुत पोलाइटली, पेशेंटली, पेशेंस बहुत बड़ा गुण चाहिए यहाँ पे, पेशेंटली उसकी बात को सुनती हूँ, एज अ सजेशन उसको कोई बात रखती हूँ, कई बार वो उसको रिजेक्ट कर देता है। बाबा की कोई पॉइंट मुरली में से आएगी, पूरी मुरली तो वो नहीं सुनता, एक छोटा सा क्लिप उसमें भेजूंगी, या कोई ऐसा मुझे लाइव में कोई दिख जाएगा जहां पे वो चीज मुझे लगता है कि यस ये हुआ था या इस चीज का उसको फायदा होगा, मैं वो छोटे छोटे क्लिप्स उसको भेजती रहती हूँ। जैसे कईयों ने ये भी कहा था, हमारे बच्चे फॉरेन में हैं, घर आना नहीं चाहते, और मुझे बहुत प्राउड होता है, मेरा बेटा वहां पे उनके जो रूममेट्स हैं वो 3-3 महीने घर नहीं जाते, अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ छुपाते हैं, और मेरा बेटा हर 2 हफ्ते के बाद घर आने को वापस, और मैं मुझे बोलती हूँ इतना खर्चा करके क्यों हर 2 हफ्ते बाद आ जाता है, अभी रुक जा, नहीं मेरा नहीं दिल लगता वहां पे, मुझे तो घर में आपके साथ रहना अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल, उनके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाना, उनके साथ हर बात शेयर करना, वो क्यों बाहर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, क्योंकि हम उनके फ्रेंड्स बनते नहीं हैं, तो हमें उनका फ्रेंड्स बनना है, वो हर बात शेयर भी करते हैं और हमारे साथ उनका दिल भी लगता है। थैंक यू।
इन्होंने अपना अनुभव ये शेयर किया। अच्छा, और किसी के पास है जो इनके प्रश्न का? आइए आइए।
ओम शांति। मेरा नाम निधि वालिया है और मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ी हूँ। मेरे को अगर मैं अपने, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय प्रोफेशन हेयर कि मैंने क्या किया है या मैं क्या पा चुकी हूँ, फिर भी मेरे को लगता है कि जो मेरे पास है वो जो आप लोगों के पास है उसका सिर्फ एक कतरा मात्र है। अब मुझे नहीं पता वो कतरा आपके किसी काम आ सकता है या नहीं, लेकिन मन में भावना है कि जो मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहले दीदी ने वो बोला कि जो बच्चा छोटा है या वो बड़ा होता है ड्रग्स की तरफ जाता है या विकारों की तरफ जाता है, तो विकार ही है ना। सबसे बड़ी बात कि कमल हमने सबने देखा है कीचड़ में खिला रहता है, कमल निर्लेप है, कीचड़ चाहके भी कमल पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। कमल को कोई बार बार ये नहीं सिखाता इधर मत झुक उधर मत झुक, ये कमल को प्रभु ने ही ऐसा बनाया है, नेचर ने ही ऐसा बनाया है। बच्चे को जन्म देने वाला उसकी माँ है, पालने वाला वो क्रेडल उसका परिवार है। अगर माँ अपने 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को समय नहीं दे पाती या उसको खाना खिलाने के लिए एक टैबलेट की जरूरत पड़ती है या कार्टून नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, तो मेरे को लगता है कि वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। श्री कृष्ण का उदाहरण देखिए, माता यशोदा माखन खिलाती थी, कैसे खिलाती थी। जब आप अपने बच्चे में संस्कार ही बचपन से ऐसे डाल रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, जो बोगे वो पाओगे। सीड अगर बबूल का बोया है तो फल आम का नहीं लगेगा। बच्चे में नकारात्मकता मत डालो, अपने बच्चे के साथ कभी किसी की बुराई मत करो। मेरी सास ने मेरे साथ ये किया, तेरी बुआ तो है ही ऐसी, तेरी चाची ने मेरे को ये बोला हुआ है, बातें मुझे भूलती नहीं है, सब याद है, सब बदला लूंगी। बदला आपने अपनी सास से नहीं लिया, ना देवरानी से, ना ननद से, बदला आप अपने बच्चे से ले रही हैं, उसमें नकारात्मकता भर भर के। ये नकारात्मकता नेगेटिविटी आप डे वन से भरती हैं, जो वो 8-10 साल तक उसको देना शुरू कर देता है। बुराई कहां पे आई, आपके अपने बच्चे के करैक्टर में। बच्चे के साथ आपने एक दूरी मेंटेन कर दी। आज हर माँ ने अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ दूरी मेंटेन करी हुई है। वी आर बिजी इन आवर प्रोफेशंस, वी आर, मेरे को ये है, मेरा साल का 12 लाख का पैकेज है, मैंने इसको 24 लाख का करना है। घर पर का क्या है, 5,000 की मेड रख दूंगी, वो खाना बना देगी, बच्चों को लुक आफ्टर कर दूंगी। बच्चा आपके पास आया, ही और शी वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग विद यू, पहले तो आपके पास टाइम नहीं है, फिर आपने सुना, सुनने के बाद एक थप्पड़ लगा दिया, ये क्या किया तुमने। नो, बच्चा आपके पास शेयरिंग के लिए आता है, सुनो, बच्चे को उस शेयरिंग के लिए कभी ब्लेम मत करो, बच्चे को लेबल मत करो। अगर आप अपने बच्चे को लेबल करोगे कि तेरे में ये बुराई है, तू तो है ही ऐसा, तो वो आगे से आपके साथ कभी शेयर नहीं करेगा। बच्चा है, उसमें विकार आ गया है, सुनो और उसका समाधान ढूंढो। समाधान उसको ऐसे बताओ कि ऐसे लगे समाधान उसी के अंदर से आया है, ना कि अपनी बात को बच्चे पे थोपो। जब आप ऐसी चीजों को लेके चले गए तो आपका बच्चा कभी आपसे कुछ डिस्कस करने से हेजिटेट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मेरी माँ ने मेरे को ब्लेम नहीं करना। क्या बात है, एक बार स्मोक कर लिया, मैं जिस स्टेटस सर्कल में बैठती हूं, मेरे साथ हर लड़कियां ड्रिंक करती हैं, स्मोक करती हैं, मैंने आज तक कभी किसी ड्रिंक का स्वाद भी नहीं चखा। उनके साथ बैठती हूं, साथ खाना खाती हूं, अंदर अंदर से ये चीज है ना। आज भी मैं अपने फादर से बात कर, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, माई फादर ही वॉज 83। आज भी मैं अपने फादर से डिस्कस कर सकती हूँ ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज मुझे पता है वो मेरे बारे में ये नहीं सोचेंगे अगर इसने ये बात शेयर की है तो मेरी बेटी ऐसी है। नो, एक ये चीज को लेके चलो। सेकेंडली, हम कहते हैं कि वो समाज किसने बनाया है, हम ही ने तो बनाया है। मेरे लिए आप समाज हैं, आपके लिए आप समाज हैं। अगर हम सब लोग ये चीज अपने अंदर लेके आए तो हम अपने बच्चे की टेंशन क्यों लेते हैं। आपका बच्चा भी तो मेरा बच्चा है, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे की टेंशन नहीं है, मुझे आप सबके बच्चों की टेंशन है, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है। लेकिन मैं यहां पे जितनी बच्चे देखती हूं, मुझे लगता है ये मेरा ही बच्चा है। सड़क पे कोई आदमी स्मोक करता है न्यू दिल्ली में, मैं वहां पे रुक जाती हूं, मैं उनको बोलती हूं, भैया स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, प्लीज स्टॉप इट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भावना हमने मन में लेके आनी है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, एक और चीज आपको मैं बोलना चाहती हूँ। यहां बैठी जितनी मेरी बहनें, जितनी माताएं हैं, हम सब ने प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस सुना है, ठीक है ना, कि जो चीज है उसको एक्सेप्ट करो। मैं आपसे ये कहती हूं कि जिंदगी में अपने लिए भी जियो। हमेशा गठड़ी बांध रखी है हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, मैंने परिवार के लिए ये करना है, मैंने बच्चे के लिए ये करना है, पति के लिए ये करना है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी अपनी आत्मा के प्रति, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। एक्सेप्टेंस इस चीज की कि मेरी बाउंड्री ये है, इसके आगे नहीं मैं जा सकती। सबको खुश करना मेरे बस में नहीं है, जितना मेरे से हो सकता था मैंने बहुत बढ़िया किया, अपना सब कुछ दिया, अब मेरा जो फाइनल जवाबदेही है वो उसके प्रति है, ठीक है ना। उसको खुश करना है, अपनी आत्मा को खुश करना है। अगर अपनी आत्मा के प्रति जवाबदेही रहोगे ना, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सारे दिन में जो किया वो सोचो, मैंने किसके साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कभी किसी के चाह के साथ भी बुरा नहीं कर पाओगे। आपको दर्द चोट लगेगी, दर्द मुझे होगा, क्यों? क्योंकि आत्मा से आत्मा जुड़ी है। तो क्या हो गया अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब कठपुतलियां हैं, पपेट्स हैं, डोर किसके हाथ में है? जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं। विकार क्या है? विकार बाधाएं हैं आपके रास्ते में, उनको कैसे पार करना है? सॉल्यूशन सब आपके पास है। आपके परिवार की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकती, जबकि मैं खुद मनोविज्ञान से जुड़ी हूं। सॉल्यूशन आपके अंदर है। मैं आपको इस काबिल कर दूंगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद दोगे। अपने घर के बच्चे की प्रॉब्लम आप खुद सॉर्ट आउट करोगे, अपनी प्रॉब्लम आप खुद सॉर्ट आउट करोगे। बस करो ये गठरियां भरना, अब फाइनल की तैयारी करो। बस लाइफ में एक्सेप्टेंस को अपनाओ, अपने लिए जियो। आप सब एक यूनिक पर्सनैलिटीज हो जिसने भगवान ने एक खास एम के लिए बना के भेजा है। यू आर यूनिक पर्सनैलिटी। और मैं यहां बैठी हर छोटे बच्चे से लेके हर बड़े, अपने गुरु भाई, गुरु माताएं, गुरु बहनें जो भी हैं, आप सबके काम के लिए जो आप कर रहे हो, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हम सबकी तरफ से। और भगवान करे आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, इतनी शक्ति मिले कि आप ऐसे ही लव और अफेक्शन की जो खुशबू है वो इस पूरे जहां में बिखेरते हो। ओम शांति।
अभी आपको मैं समझती, उत्तर तो मिल गया होगा, करना तो आपको ही होगा। हाँ जी, आप और कुछ मत सोचिए, ये बेचैनी समाज के अंदर है, ये सब कुछ नहीं सोचिए। आप हर रोज, अभी तो आपने अपने बच्चे की बात कही थी ना, मैं ये कहूंगी जो यहाँ पर सिखाया जाता है कि सबसे पहले होता क्या है कि हम जो वाइब्रेशंस भेजते हैं, ये अपने आप से पूछो कि पहले नेगेटिव भेजते हैं या पॉजिटिव भेजते हैं। स्पीड किसकी फास्ट है? अब आपने मान लो बच्चे की बात कहते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, जहां गया है वहां ठीक रहे, ऐसे अच्छा गया तो है, पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा, ऐसा तो नहीं हो। आपने पहले ही ऐसे सोच लिया, घर से बाहर गया है ठीक ठाक, पता नहीं अपने ऑफिस में पहुंचा नहीं, पहुंचा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कहीं ये तो नहीं, अपने नेगेटिव। बेटा आप जब पहुंच जाए ना, मुझे फोन जरूर कर देना, क्योंकि नेगेटिविटी है आपके अंदर। तो आप जो भेज रहे हो ना, वो देखो क्या भेज रहे हो। अगर आप उसके स्थान पर अभ्यास करना शुरू कर दीजिए पॉजिटिविटी का, आपको धीरे धीरे रिजल्ट बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड फास्ट है, उसकी स्लो है, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज इस समय किस चीज की है? नेगेटिविटी की बहुत है। तो पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, समाज की बात छोड़ दीजिए, पहले अपने को तो करो। हम अपनी तो सोचते नहीं है, हमको चिंता लगी हुई है दूसरों की। अब दूसरे ठीक होंगे नहीं और मैं अपने आप को ठीक कर नहीं पा रही हूं। तभी हम हमेशा एग्जांपल देते हैं, आप फ्लाइट में जर्नी करते हैं, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर कुछ भी ऐसी बात हो, पहले अपना ध्यान रखना, फिर अपने पड़ोसी, अपने बच्चे का रखना, पहले अपना। आप खुद सेफ होंगे तो दूसरों को कर सकेंगे ना। हम क्या करते हैं, अपना तो सोचते नहीं है, हम दूसरों का ज्यादा सोचते, चाहे वो बच्चे हैं या समाज है, कुछ भी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं सब सेफ रहे, सब सुरक्षित रहे, आपका घर परिवार अच्छा रहे, तो मैं आपको दो तीन बातें जरूर कहना चाहूंगी। एक तो सुबह उठते ही आप सारे परिवार को, विश्व की बात अलग है, पहले घर परिवार को ही परमात्मा के सामने बिठा करके उनको बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स दीजिए। सुबह उठते पहले ये काम करो, जो कि कल आपने एक छोटा सा नित्य नाट्य वो डायलॉग वगैरह देखा भी था कि किस प्रकार से सुबह उठते परमात्मा को थैंक्स करते, सारे परिवार को सामने लाइए। ये कर सकते हैं। फिर दूसरा, आप ये भी संकल्प लेकर के जाओ कि जो आप घर में भोजन बनाते हो ना, वो अपने हाथ से बनाओ। ये मेड से बनवाना, बाजार से ऑर्डर करके मंगाना, चलो पेट भरना है, बाजार से ला करके खा लो। आप जो बनाओगे ना प्यार से अपने हाथ से और बच्चों को परिवार को खिलाओगे, उससे उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार आएंगे। भोजन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपने परिवार को ठीक चलाना चाहते हैं, चाहे ठीक है आज हम देखते हैं क्योंकि ये जीभ रस बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, इसको वैरायटी बहुत चाहिए। आजकल बच्चों की डिमांड बहुत हो गई है, ठीक है उनकी डिमांड पूरी करनी होगी आपको, लेकिन उसमें भी हम कह सकते हैं देखो आज मैं ये चीज बनाऊंगी जो सबको खाना है, कल दूसरे की डिमांड पूरी कर दीजिए, लेकिन अपने हाथ से बनाना सीखो। बाजार से ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा लिया, आजकल होम डिलीवरी फास्ट है और हम सभी मिल करके बैठ के खाते हैं, तो आप सोचिए कि परिवार में आपस में प्यार कहां से बढ़ेगा। भोजन का बहुत ध्यान रखो, हो सकता है मेड से बनवाते हैं, आप घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चे को मेड के हवाले कर देते हैं, अब मेड ही उसको सारा दिन पालती है, उसको खिलाती है, सब कुछ करती है, क्या उसके अंदर संस्कार जाएंगे। ठीक है मेड का अपना रोल है, लेकिन मां का रोल तो मेड नहीं करेगी। घर में जो है किचन में आपने कुक रख ली, कहते हैं कि हाँ हमने किचन में कुक रखा, हम खाना वाना दे, हम बिजी रहते हैं। ठीक है बिजी रहते हैं, आप अपना थोड़ा शेड्यूल को ऐसा बनाइए। तो इस प्रकार से वो आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, भोजन का बहुत ध्यान रखो। और तीसरा मैं ऐसा कहूंगी, जैसे कि हम सब सुन भी रहे हैं, अपने परिवार के साथ थोड़ी देर के लिए भी संगठित रूप से बैठो जरूर, शेयरिंग वो बहुत जरूरी है। चाहे टाइम नहीं है तो भी टाइम निकालो, सब टाइम तो उतना ही रहेगा, आपके हाथ में है टाइम को कैसे निकालना है, क्या करना है। अगर परिवार को बांध के चलना है तो, अदरवाइज हम देखते हैं जो परिवार की स्थिति हो रही है वो तो देख ही रहे हैं, सब हो रही है, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ये कहती हूं कि मैंने भी आपको बता दिया, चार लोगों ने सबने बता दिया, लेकिन करना किसको है, करना तो मुझे ही है। करने के लिए जैसे शुरू में मैंने कहा शक्ति चाहिए, और शक्ति आपको कहां से मिलेगी, शक्ति सुप्रीम से मिलेगी, उससे जरूर अपना कनेक्शन जोड़ो जो कि आप सुन भी रहे हो। और मैं ऐसा कहूंगी टाइम निकाल करके अगर आप जिस सेंटर से कनेक्शन में आए हो वहां सेंटर से अगर आप कनेक्शन रखेंगे तो आपको बहुत वहां से सहयोग मिलता रहेगा। सुप्रीम से अपना कनेक्शन जरूर जोड़ो। और फिर कहूंगी एक तरफ हम शक्तियां ले रहे हैं, दूसरी तरफ देखना है कि मेरी कहीं लीकेज तो नहीं है, शक्तियां कहीं जा तो नहीं रही है। वो लीकेज पॉइंट जरूर देखिए, लीकेज कौन सी है, लीकेज कौन सी है, नेगेटिविटी सुनना देखना, आजकल जो हाथ में ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी का साधन मिला हुआ है। जैसे वो सुना रहे थे ना, कहा कि दो दिन भी जो है मोबाइल कहा कि नहीं रखना है, नहीं कोई भी इमरजेंसी कॉल कुछ भी नहीं आया, ये तो हमारे हाथ में है। तो जितना हो सके अपने आप को जो जहां से नेगेटिविटी आती है ना उससे बचाइए, क्योंकि ये आपकी लीकेज होती है, इधर से लेते हैं उधर से जाती है, और फिर अपने आप को हम फील क्या करते हैं, कमजोर फील करते हैं। तो मैं ऐसा कहूंगी कि इन बातों का, ये थोड़ी सी शॉर्ट में बातें तो बहुत सारी है, शॉर्ट में ये बात कहूंगी, अगर आप अपने परिवार में अभी वापस जाएंगे तो अगर आप थोड़ा थोड़ा ये फॉर्मूलस यूज करेंगे, और बाकी भी हमारे वक्ताओं ने बताया है फॉर्मूलस यूज करेंगे, अवश्य ही घर परिवार बहुत सुंदर हो जाएगा, मेरा ऐसा विचार है। सहमत है इस विचार से या नहीं है? है? सबको ठीक लगता है? और भी किसी को कोई अपनी शेयरिंग करनी हो कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, 12:30 तक था और लगभग 1:45 हो गया है, तो अभी बस सिर्फ इनका सुन करके 2 मिनट फिर हम मेडिटेशन करके पूरा करेंगे।
ओम शांति।
आप जल्दी पूरा करें।
माई सेल्फ गुल अरोड़ा, मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आपसे परिवार के बारे में ही कुछ बोलती हूँ। मैं फतेहाबाद से बिलोंग करती हूँ, फतेहाबाद की बेटी हूँ। मेरे मम्मी डैडी ज्ञान में चलते थे, हम छोटे छोटे थे, हमने उनको ज्ञान में चलते देखा। तो मेरी शादी हुई, मेरी भी 2 सासें थी, तो मैं बड़े चंचल स्वभाव की थी, मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत आई। जब मैं पहली बार मायके आई, ससुराल का माहौल थोड़ा चेंज था, क्योंकि ज्ञान का तो वहां नहीं माहौल था। मैंने आके अपने घर में अपने घर की बातें बताना शुरू करी, भी ऐसा है वहां पे ऐसा है। तो मेरे डैडी ने मुझे बोला, देखो तू थी तो चंचल, मैंने सोचा था तुझे एक भी सांस नहीं लेके दूंगा, पर तेरी किस्मत में 2-2 सांसें थी, अब तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं एडजस्ट कर सकती, क्योंकि वहां बड़ा वो जैसे होता ही है। तो उन्होंने मुझे, तू कितना पढ़ी हुई है, मैंने कहा बीए करी हुई है। कहते फिर बीए तुझे इसलिए कराई थी तू अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। उनकी वो बात मेरे माइंड पे इतनी अटैक करी, मैंने सोचा इसको तो मैं ही सॉल्व करूंगी। मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या किया, अपने सास ससुर को ज्ञान में चलाया। वो आश्रम जाना शुरू हुए, आश्रम जाना शुरू हुए तो मेरे घर का माहौल भी चेंज होना शुरू हो गया। उसके बाद मेरे मदन इन-लॉ ने मुझे एमए भी करवाया, बीएड भी कराया, और आज 29 इयर्स हो गए हैं मैं अपने इन-लॉज के साथ में हूँ। हालांकि मेरा देवर है वो अलग है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। और सेकंड, मेरी मदर, मेरे हम 3 बड़ी बहनें हैं, और मेरा भाई की शादी हुई, भाभी आई, 2 दिन बाद मम्मी ने हम तीनों बहनों को बिठाया, हमें बोला, कहते देखो तुम अब भाभियों वाली हो गई हो, तो आज के बाद इन भाभियों का कोई गुण हो तो मुझे बता देना, इनका अवगुण होए तो अपने साथ ले जाना, मेरे साथ शेयर मत करना। और आज वो दिन की सीख हम तीनों बहनों ने ऐसी ली, हमने अपनी मम्मी के साथ कभी भाभियों की आज तक बात नहीं की है। 20 ईयर से हमारी ज्वाइंट फैमिली है फतेहाबाद में, और दोनों भाई इकट्ठे हैं, दोनों भाभियां इकट्ठी हैं, उधर की भी ज्वाइंट फैमिली है, इधर की भी ज्वाइंट फैमिली है। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम में हमारे पेरेंट्स कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं, तो हम बच्चे होने के नाते उनकी सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मानते भी हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स के उसको बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए, कभी ना कभी वो बातें बच्चों के काम भी आती हैं, बच्चे फॉलो भी करते हैं। हमारे डैडी कहा करते थे, बच्चा एक बार नहीं सुनता ना, उसको 20 बार बोलो, उसको याद रहेगी, कभी ना कभी उसके वो बात काम आएगी। और मैं सच कहती हूँ, हमारे घरों का माहौल, दोनों घरों का माहौल आश्रम में जाने की वजह से बहुत अच्छा है, बहुत कुछ हमने सीखा है, और हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। ओम शांति।
चलो, अभी आप सबने जो सुना है उसको अंदर समाएंगे, और जो भी बाबा ने और जो अनुभवी वक्ताओं ने अपना सुनाया, जिसको भी जो बात अच्छी लगी हो प्रैक्टिकल करने का करेंगे, क्यों नहीं, सब चीज संभव है, कोई बात असंभव इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ अंदर से एक दृढ़ता हो कि मुझे करना है, बस ये ध्यान रखना है, तभी हम आज की वर्कशॉप पूरी करते हैं, फिर हम मिलते रहेंगे। है अभी तो आप आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, परसों ही जाने का, हो सकता कोई कोई कल भी जा रहे होंगे, वरना परसों ही जाने का दिन है। तो अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।